राम। राम जी महाराज अपने पुरी के लिए जब रवाना होते हैं तो अयोध्यावासी सब नंदीग्राम में आए हुए वे उनके साथ साथ चलते हैं, तो उस समय राम जी की बड़ी निराली शोभा होती है। दूर्वा दल के समान श्याम वर्ण वाले भगवान महार किरीट रत्नाभरणांचितांगम, वे बहुत मूल्यवान जो है ये किरीट धारण किए हुए, लाल लाल उनके नेत्र है, एक एक अंग की निराली निराली शोभा देखकर वे अयोध्यावासी अपने को बड़ा पुण्यवान मानते हैं, उनको बड़ा आनंद का अनुभव होता है। आपस में बात करती हुई कहती है स्त्रियां कि देखो इनका पीतांबर कितना अच्छा है, कोई कहता है कि देखो इनका जनेऊ है ये कितनी अच्छी है, कोई कहता है कि देखो इनके जो है मुक्ता हार मोतियों की जो हार है माला है ये कितनी अच्छी है। सुग्रीवादी सब बानर बड़े शांत भाव से उनकी सेवा में खड़े हुए हैं, कस्तूरी उनके सारे शरीर पर लिप्त की गई है। स्त्रियां राम को देख करके बड़ी आनंदित होती है। अयोध्या के अंदर अभी जो रह रही स्त्रियां हैं वो तो सारे कार्य को छोड़ छोड़ करके महलों के झरोखों में बैठ बैठ करके राम जी को अपने नेत्रों से मानो पी रही हो, निर्मिमेश दृष्टि से देख रही है राम जी को। दृष्ट्वा हरिम सर्व दृगोत्सव आकृतिम, ऐसा लगता है कि हमारे आंखों को एक बहुत बड़ा उत्सव मिल गया है। वे अपने नेत्रों से राम जी को देख देख करके अपने मन में स्थापित करते हैं, ये तो अभी चले जाएंगे यहां से लेकिन हमारे मन के अंदर इनको रख लेंगे और मन ही मन से इनके रूप का बार बार दर्शन करेंगे। राम जी प्रजावासियों से बड़े प्रेम से मिलते हैं। प्रेम का अर्थ क्या है कि स्मित स्निग्ध दृशा, मुस्कुराते हुए मुख से और कोमल दृष्टि से देखना, प्यार की दृष्टि से देखना। देखो प्रेम है ना वो आंखों में रहता है सज्जनों, आंख के अंदर प्रेम का निवास है और मुस्कुराहट है वो चेहरे पर रहती है, तो अंदर के अपने अपने हृदय के अंदर जो कारुण्य भाव है कृपा भाव है वो कृपा भाव आंखों से आता है और अपने अंदर जो प्रेम भाव है वो प्रेम भाव यहाँ होठों पर आता है। तो राम स्मित स्निग्ध दृशा प्रजा, और प्रजा है वो राम को देख देख करके वो जो है छोड़ती नहीं, उनको देखती रहती है कि इनके जितने दर्शन हो जाए उतने ही जो है कम है, खूब दर्शन करते हैं। ऐसे करते करते अपने महल में राम जी महाराज पधारे, माताओं के चरणों में प्रणाम किया और जो भी वहां थे उपस्थित लोग सब मिलते हैं उनसे। राम जी ने भरत जी से कहा कि देखो भरत, मेरा जो अनेक प्रकार से सुविधाओं से युक्त महल है ना, उस महल को आप बानर राज सुग्रीव के लिए देओ, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि और बंदरों की निवास व्यवस्था को भूल जाओ, सबकी निवास व्यवस्था करो। भरत जी ने कहा ठीक है महाराज, ऐसा ही करेंगे। भरत जी ने सुग्रीव को अच्छे महल में जो है स्थापित किया और कहा कि हे वानर राज सुग्रीव, आप तो सदा ही राम जी की खूब सेवा किए हो, आज एक मौका और दीजिए सेवा करने का। कहने लगे भरत जी मैं क्या सेवा कर सकता हूं, आप चार दिशाओं के चारों जो है समुद्रों से चार कलशों में चार बंदरों को भेज करके जल मंगाइए, राम जी का अभिषेक करना है। तब सुग्रीव ने कही तो अच्छा अवसर दिया हमको मौके का। तो देखो सुग्रीव ने खूब विचार करके पहला नाम जामवंत जी का लिया। जामवंत जी कैसे हैं कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो मंत्री है बूढ़े है नहीं अति बूढ़ा है, आजकल का भी पता नहीं। पर जामवंत जी मालूम है कब तक रहे, जामवन जी की कथा तो आप रामायण में भी सुनते हैं, श्यमंतक मणि के प्रसंग में जामवंत जी आते हैं। श्यमंतक मणि मिली ना तो जामवंत जी भगवान को भूल गए। बात क्या थी कि वो सिंह है, वो मणि लेकर यूं जा रहा था, जामवंत जी जो है अपने गुफा से बाहर आए, अब दोनों की मुठभेड़ हो गई, दोनों में खूब लड़ाई हुई, सिंह को मार दिया और मणि देखी, ऐसी चमकीली मणि रामावतार से लेकर यहां कृष्णावतार तक जामवंत जी ने देखी नहीं। उन्होंने देखा कि मणि रख दूं और उसके बाद कृष्ण भगवान के दर्शन करने जाऊंगा। वो मणि ले जाकर वहां रखी और वो मणि के स्थापित करते ही 64 मण सोना पैदा हो गया। अरे ये सोना, फिर दूसरे दिन सोना पैदा हो गया, फिर 64 मण सोना हो गया। रोज 64 मण सोना जो देने वाली हो, ऐसे मणि को देकर जामवंत जी ने कहा अब राम से तो फिर कभी मिलेंगे, सोना कितना मिल गया, सोना कितना मिल गया। और जब राम जी वो कृष्ण भगवान आए और उसमें लेने के लिए, मणि लेने के लिए, तो कृष्ण भगवान से लड़ने लगे, मारने लगे। कृष्ण भगवान कहते रहे जामवंत जी मैं तो आपको पहचानता हूँ, आप रामावतार में मेरी कितनी सहायता की है। जामवंत जी तो भगवान के मुक्का मारता है, लात मारता है, बार फेंकता है, इतनी भक्ति करने वाले जामवंत जी। देखो सोना ज्यादा हो गया ना उनके पास, रोज 64 मन सोना हो गया तो भगवान को भूल गए। अस्तु तो सुग्रीव ने जामवंत जी को भेजा कि एक समुद्र की तरफ आप जाओ, एक तरफ हनुमान जी को भेजा, तीसरे अंगद को भेजा और चौथा सुसेन को भेजा। अब देखो हनुमान जी को कौन सी दिशा में भेजा है, जामवंत जी को कौन सी दिशा में भेजा है, अंगद को कौन सी दिशा में भेजा है और सुसेन को कौन सी दिशा में भेजा है, बहुत सोच समझ करके भेजते हैं। जामवंत जी बूढ़े है ना तो वे पूर्व दिशा की ओर गए, हनुमान जी महाराज खूब जो है जो युवा है तो वो दक्षिण दिशा में गए, और अंगद जी है वो उत्तर दिशा में गए, जामवंत जी जो है आगे उत्तर दिशा में गए, अंगद जी है ये पश्चिम दिशा में गए, ऐसे वो चारों दिशाओं में गए। फिर जो है वो जल ले आए, सब व्यवस्था हो गई। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि भाई जल आ गया कि नहीं, नहीं जल तो कि नहीं पहले का जल है क्या है? कि हाँ पहले का। सुग्रीव ने कहा नहीं महाराज, ये रातों रात हम जल लेकर के आए, चारों समुद्रों का जल। गुरु जी ने कहा रातों रात समुद्र का, हमारे बंदर ऐसे है महाराज ये लिया। तब जो है वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक सोने का रत्नमय सिंहासन उसके ऊपर विराजमान कर दिया और फिर सारे ऋषि वामदेव जाबाली गौतम वाल्मीकि सब के सब राम जी के अभिषेक के लिए वहां पर आए, सब ने अभिषेक किया और बड़े अच्छे अच्छे ब्राह्मणों ने मंत्रियों के साथ में बैठ करके राम जी को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। उस समय में जो है देवताओं ने बड़ी अच्छी स्तुतियां गाई। अब किसी ने तो छत्र ले रखा है, किसी ने चंवर ले रखा है, चंवर तो लिया है सुग्रीव ने और विभीषण ने, छत्र लिया है शत्रुघ्न जी ने, और राम जी महाराज वहां पर बैठे तो सबसे पहले वायु देवता ने इंद्र के कहने से आकर के माला पहनाई, सोने की एक माला पहनाई। उस सोने की माला के अंदर सारे रत्न और सब मणियां थी। और फिर स्वयं इंद्र आया, उसने एक हार पहनाया, देवता लोग खूब नाचने लगे गाने लगे और दुंदुभियां बजा बजा करके भगवान का राज्याभिषेक करने लगे। राम जी महाराज का शरीर था वो नई नई दूर्वा के समान श्याम वर्ण वाला और करोड़ों करोड़ों सूर्यों की प्रभा से युक्त उनका किरीट उससे बड़ा जगमगा रहा था। अच्छे दिव्य आभूषण दिव्य चंदन आदि का लेप किया हुआ था। वाम भाग में सीता जी बैठी हुई थी, सीता जी के सारे आभूषण पहने हुए थे, रक्तोपलक रामबोजाम वामे नालिंग संस्थितम सर्वातिशय सौभाड्यम दृष्ट्वा भक्ति समन्वित है। फिर जो है सीता जी को देखा कि सीता जी लाल वस्त्र पहनी हुई है और राम जी के बाईं ओर विराजमान है, सारे आभूषण पहनी हुई है और रक्त कमल धारण की हुई है, अनेक प्रकार के स्वभावों से वो युक्त है, ऐसी सीता जी को देखा। ऐसे समय में भगवान शंकर और पार्वती आए। आप कहेंगे कि ये कथा तो सुना रहे हमारे शंकर भगवान ही, तो शंकर भगवान तो कथा में कथा कह रहे हैं, असल में ये कथा सूत जी सुना रहे और व्यास जी लिख रहे हैं। असल में ये व्यास जी की ही सुनाई हुई है, हम लोगों को तो व्यास जी सुना रहे हैं और शंकर जी पार्वती को सुनाते हैं। तो जहां ये संबोधन आता है कि देखो सुनो पार्वती, इसका अर्थ है यह शंकर भगवान बोलते हैं, और जहां शंकर जी का भी इशारा करके किया जाए इस कथा के अंदर, शंकर जी को भी लेकर के बोला जाए कि देखो शंकर जी ने ऐसा कहा और वैसा कहा, तो वो वहां पर स्वयं व्यास जी महाराज बोलते हैं। तो व्यास जी महाराज बोलते हैं कि शंकर जी को वहां जो है पार्वती के साथ उपस्थित होते देख करके सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और महादेव शंकर कहने लगे, नमोस्तु रामाय सशक्तिकाय नीलोत्पलश्यामल कोमलाय किरीटहारांगद भूषणाय सिंहासनस्थाय महाप्रभाय। बड़ी स्तुति गाई। महाराज नील कमल के समान श्यामल भी है और कोमल भी है, श्यामल कोमल आए और अनेक प्रकार की शक्तियों से आप युक्त है, आदि अंत मध्य से रहित है, सृष्टि को बनाते भी है, पालते भी है और लीन भी करते हैं और फिर भी आप अलग के अलग रहते हैं। आपने तो लीला के द्वारा अपने गुणों को ढक लिया, लेकिन जो आदमी लीला सुनता है उस आदमी के मन में आपकी आपके प्रति बड़ी भक्ति पैदा होती है। उस आदमी से आप छिप नहीं सकते हैं। जो आदमी आपकी लीला सुनता है उससे आप छिप ही नहीं सकते हैं। मनुष्य आदि कई अवतार लिए, परंतु ये जो आपका अवतार हुआ है राम रूप से, जो अवतार हुआ है इस राम रूप से अवतार को तो महात्मा लोग बहुत आदर दृष्टि से देखते हैं। स्वांसेने लोकम, आप संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं और लक्ष्मण जी यहाँ जो लक्ष्मण के रूप में दिखते हैं वो शेषनाग के रूप में भी अभी पृथ्वी को धारण ही किए हुए हैं। आप ऊपर नीचे अनेक रूपों में विराजमान हैं। प्राणियों के अंदर आप अग्नि रूप से रहते हैं। देखो लोग कहते हैं कि हमारे भगवान हमारे अंदर रहते हैं, तो फिर भगवान हमको जो है पाप से रोकते क्यों नहीं है? पाप से रोकना चाहिए। अच्छा हम कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर आग है, लेकिन शरीर को जलाता क्यों नहीं है? हमारे शरीर के अंदर वायु है तो वो सारे खून को और पानी को सुखाता क्यों नहीं है? हमारे शरीर के अंदर जल भरा हुआ है तो इस जल के अंदर जो चीज रहती है वो गल जाती है, अंदर के हार्ट वगैरह सब चीज गले तो नहीं है? जल है सब जगह, सब जगह जल है, सब जगह वायु है, सब जगह अग्नि है, न तो गलते हैं हम लोग, न जलते हैं हम लोग और न सूखते हैं हम लोग, नहीं सूखते हम। तो इसका अर्थ ये मानना पड़ेगा कि पांच भूतों के रहते हुए भी पांच भूतों का निर्गुण प्रभाव पड़ता है हमारे पर। अग्नि हमारे अंदर है लेकिन वो जलाने वाली अग्नि नहीं है, वो अन्न को पचाने वाली अग्नि है। ऐसे ही भगवान हमारे अंदर है पर वो व्यापकता बताने के लिए हमारे अंदर है, वो कुछ करने धराने के लिए हमारे पास नहीं है कि भगवान सब जगह रहते हैं, चलो हमारा हम तो भगवान में ही रहते हैं तो फिर भगवान हमारे पाप को क्यों सहन कर रहे हैं? कि वो पाप पुण्य को मिटाने के लिए नहीं आए, पाप मिटाने के लिए हमारे पास नहीं आए, पाप मिटाने के लिए भगवान ने हमको ज्ञान दे दिया और पुण्य कमाने के लिए ज्ञान दे दिया, मोक्ष कमाने के लिए ज्ञान दे दिया, बस इतना पर्याप्त है, आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। भगवान के रहते हुए भी हमारे अंदर भगवान वैसे ही प्रकट नहीं होते जैसे हम लोगों के अंदर अग्नि रहते हुए भी अग्नि प्रकट नहीं होती। वो अग्नि पांच प्रकार से है, हमारे पंचाग्नि है, लेकिन भगवान की वो अग्नि ये वो जो है हमको जलाती नहीं, भगवान का विधान है ऐसा है। ऐसे ही पांच प्रकार का वायु है, पवन पंचक रूप सहाय, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु। वायु में भी भेद होता है, वायु में काय का भेद, भाई सूक्ष्म होते ही वायु तो उसमें भी भेद है कि होती है, उसमें भी भेद की बात है। जगत अखंडम अनेन बिभर्षि, सारे जगत को आप धारण करते हो, सूर्य चंद्रमा के मध्य में और अग्नि के मध्य में जो तेज है वो तेज आप हो, सब प्राणियों के अंदर धैर्य शक्ति है वो धैर्य शक्ति आप हो, शौर्य शक्ति आप हो, आयु बल है वो भी आपका है। आप ही महाराज ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही शिव हो, आप ही काल रूप से हो, आप ही कर्म रूप से हो, आप ही सूर्य रूप से हो, आप ही अनेक प्राणियों के रूप से हो। आप जितना रूप बताया जाता है सब रूपों में भी हो और सबसे आप अलग के अलग भी हो। आप ही मत्स्य बनते हो, आप ही वामन बनते हो, आप ही वराह बनते हो। तथैव सर्वम सदसद विभागस त्वमेव नान्यत भवतो विभाति, आपके अलावा दूसरा कोई है नहीं, न सत है न असत है, ये दोनों ही आपके अंदर नहीं है। यद यद समुत्पन्नम अनंत सृष्टौ उत्पत्स्यते यच्च भवच्च यच्च, जो कुछ आज तक उत्पन्न हुआ, जो आगे उत्पन्न होने वाला है और जो उत्पन्न हो चुका है वो आपके अलावा नहीं है महाराज। इसलिए साधारण आदमी आपके तत्व को जानते नहीं है, और जो निर्मल मन वाले हैं वे निर्मल मन वाले लोग आपकी भक्ति को करके और आपके भक्तों की सेवा करके परब्रह्म परमात्मा को पहचानते हैं। नहीं तो ब्रह्मा आदि भी हरदम रात दिन काम में लगे रहने पर आपको नहीं पहचान सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं पहचानते, दूसरा आदमी कैसे पहचानेगा। काम धंधा करते हुए ब्रह्मा जी भी आपको नहीं पहचान सकते। तो नहीं पहचान सकते का अर्थ यह नहीं है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति उसको पहचानना बड़ा कठिन हो, यह कठिन नहीं है। तो यह कठिन नहीं बल्कि नहीं पहचान सकते का अर्थ है कि बुद्धि आदि के द्वारा किसी बल के द्वारा उन परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। ब्रह्मा आदि भी आपके तत्व को नहीं जान सकते क्योंकि वे बहिरर्थ भावा, उनकी दृष्टि बाहरी बार रहती है। ऐसे सज्जनों हमारी दृष्टि यदि बाहरी बार रहेगी तो परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। अहम भवन नाम गृणन कृतार्थो, भगवान शंकर बोलते हैं कि हे भगवान मैं काशी में रहता हूं, आपका नाम लेता रहता हूं और आपका नाम लेते लेते मैं सारे संसार का कल्याण करता रहता हूं। वसामि काश्याम अनिशम भवान्या, काशी में मरने वालों को मैं नाम सुनाता हूं, इसीलिए काशी में मरता है उसके ये कान ही ऊंचे रहते हैं ऊंचे, क्योंकि भगवान यूं नाम सुनाते हैं नाम अंदर। मुमूर्षमाण से विमुक्त ये हम, और जो आदमी मुमूर्षमाण है, मरने ही वाला है, बस अब मरणासन्न पुरुष है, उसको मैं आपका राम नाम का मंत्र सुना देता हूं, उसका कल्याण हो जाता है। भगवान शंकर कहने लगे कि ये जो मैंने आपका स्तवन किया है, इस स्तवन को जो सुनेगा समझेगा पढ़ेगा उसका कोई भी सुख बाकी नहीं रहेगा, सब प्रकार का उसको सुख मिलेगा। इंद्र बोलते हैं कि महाराज इस राक्षस ने हमारे सारे सुख छीन लिए। ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दे दिया कि कोई इसके वरदान से सुखी नहीं रहा, सब दुखी हो गए। देवताओं ने कहा, महाराज हमारे साथ तो इसने ऐसा बर्ताव किया, क्या रिता यज्ञ भागा धरा देव दत्ता मुरारे खलेनादि दैत्येन विष्णु हतोद्य त्वयानो वितानेषु भागा पुरावत भविष्यन्ति युष्मत् प्रसादात। इसने हमारे सारे यज्ञ के भाग छीन लिए और हमारे यज्ञों का हिस्सा ये खा खा करके और हमको यज्ञ से वंचित कर दिया, तो हम जनता को यज्ञ का फल देवे तो कैसे देवे, यज्ञ का फल तो ये खा लेता था। पितरों ने कहा, हम इतने बरस तक मनुष्यों ने हमको पिंडदान दिया, उससे हम वंचित रहे। क्यों वंचित रहे कि पितरों को हमको जो है कोई हमारे वंशज आश्विन के महीने में या कभी भी हमारे लिए पिंड दान देते हैं, तो इसने पहले तो मना ही कर दिया और देव तो हमको देव। तो गया दो नरीरदत्त पिंडादि कान्न बलादत्ती, बलपूर्वक ये खा लेता था, कोई गया जी में श्राद्ध करे और कहीं श्राद्ध करे तो। इसलिए महाराज हमारे पितृलोक में हायत्राई मच गई। सज्जनों, पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। हो पितरों का श्राद्ध, सबसे बढ़िया श्राद्ध क्या है, सबसे बढ़िया श्राद्ध है उनका नाम जप करना। जिस दिन माता पिता का दिन आए, नाम जप करो, गीता जी का पाठ सुनाओ, उस दिन जो है एकदम मौन रहो और जो है भगवान की बात ही करते रहो। बलादत्ति हत्वा गृहित्वा समस्तान इदानी पुनर्लब्ध समावे। इसलिए हम तो आपके राज सिंहासन पर बैठने के बाद ही अब स्वस्थ हुए हैं, क्योंकि अब रावण का बस चलने वाला नहीं है। यक्षों ने कहा कि महाराज हमको ये बिना मतलब बेगार में लगा लेता था, ये काम करो और ये काम करो, रे बेगार इसकी बेगार ढोते रहो बस हरदम, नहीं करे तो रावण हमको मारता था। गंधर्वों ने कहा कि हमारा काम नाच गान करके प्रजा के अंदर मनोरंजन करके लोगों को सुख शांति पहुंचाने का था, परंतु दुष्ट आत्मा रावण ने कहा कि नहीं नहीं, गाओ बजाओ तो मेरे लिए ही करो, नाचो गाओ तो मेरे लिए ही करो, आपका गुणगान गाने ही नहीं देता था और अपने ही गुणगान के लिए हमको प्रेरणा देता था। वो राक्षस मर गया, अब हम आपके गुणगान गाते हुए सारे संसार में आपकी कीर्ति फैलाएंगे। इसी प्रकार से ऋषि मुनि गाय गुयक ये सब अपने अपने दुखड़े को ले लेकर के और राम जी के पास आए। सर्वे रामम समासाद्य, सब राम जी के पास आए और सब जो है राम जी से अभिवंदित हुए और उसके बाद राम जी ने सबको बड़े प्रेम से वहां से विदा कर दिया। प्रशंसंतो मदाराम मुदारामम, जो लोग वहां आए थे दर्शन करने के लिए राज्याभिषेक में, सब बड़ी प्रसन्नता से बहुत प्रकार की सामग्रियां ले लेकर रवाना हुए। भगवान का खूब उन्होंने ध्यान किया, भगवान के रूप को अपने मन में बसाया। इस प्रकार से भगवान के राज्याभिषेक के लीला में देवताओं के वाद्य यंत्र बजने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी, चारों तरफ सारे ब्रह्मांडों में आनंद ही आनंद छा गया। भगवान हरदम मुस्कुराते हुए दुनिया का शोक दूर करने लगे और राम जी महाराज की सीता है, लक्ष्मण जी है, हनुमान जी है, बड़े बड़े ऋषि मुनि है और ये सब उनकी सेवा करते रहते थे। राम जी महाराज का जब अभिषेक हो गया तो त्रिलोकी के अंदर आनंद ही आनंद छा गया। ये जो है पृथ्वी सस्य संपन्ना हो गई, खूब जो है फलवती हुई, वृक्षों में खूब आनंद रहा, पुष्प बड़े अच्छे लगते थे और जो है लोग खूब गवों का पालन करते थे, गवों का दान देते थे। ददौ शतवृषान पूर्वम जुजेभ्यो रघुनंदन, और जब ये राम जी का इस प्रकार से अभिषेक हुआ तब सैकड़ों सैकड़ों बैल ब्राह्मणों को दान में दिए और 3 करोड़ सोने की मुद्राएं ब्राह्मणों को दान में दी, 3 करोड़। और वस्त्राभरणानि ब्राह्मणेभ्यो ददौ और अनेक वस्त्र और आभूषण ब्राह्मणों को खूब दान में दे दे करके उन्होंने वस्तुओं को पवित्र बनाई। अब बंदरों को विदाई दी जाती है। सुग्रीव को भगवान ने बड़े प्रेम से विदा दी और एक बहुत सुंदर उनको रत्न दिया। ऐसे ही अंगद को अंगद दिए। अंगद बोलते हैं भुजाओं के जो आभूषण होते हैं। एक बहुत सुंदर मणियों की माला थी। उस माला की मणियों में करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की कांति चमकती थी। भगवान ने वो बड़ा सुंदर हार सीता जी को दिया। सीता जी ने भगवान का वो प्रसाद रूप हार लेकर के और सब बंदरों को देखने लगी। जब देखने लगी तो राम जी महाराज ने पूछा कि सीते, इस हार को तुम पहनोगी नहीं क्या? तो पहन लिया, आपकी आज्ञा होगी। पहन करके वापिस निकाल करके हाथ में रख लिया। तो क्या बात है, तुम किसी को देना चाहती हो क्या? तुम संकोच मत करना, तुमको यदि देना हो तो निसंकोच देओ, बिना संकोच के देओ, खूब देओ। जिसको भी देना चाहो, सब बंदर बैठे हैं, इन बंदरों में जिसको भी देना चाहो। वैदेही यस्य तुष्टासि, तू सबसे ज्यादा प्रसन्न जिस बंदर पर है उसको दे दो। तब सीता जी ने यूं, हनुमान जी दूर थे, हनुमान जी की तरफ अंगुली से इशारा करके इधर आओ। हनुमान जी महाराज आए और बड़े कृपा भाव से हाथ जोड़ करके यूं देखने लगे। सीता जी ने वो माला थी, वो माला लेकर के हनुमान जी के गले में डाल दी। हनुमान जी उस माला को लेकर बड़े प्रसन्न हुए। देखो, कई लोग बोलते हैं कि वो मणि, एक बहुत बढ़िया मणियां दी तो राम जी ने, हनुमान जी ने स्वीकार नहीं की। तो कहते हैं, क्यों नहीं स्वीकार करते हो? कि इसमें आपकी आपकी वो नहीं है, छवि नहीं है। आप जिसमें विराजमान होते हो ना, वो चीज स्वीकार करो। अरे, मूल्यवान मणि है कि नहीं? नहीं, हमें तो जो आपकी छवि दिखाई न दे उसको अच्छा नहीं लगता। कि तुम्हारे अंदर कौन से ये फाड़ के दिखा दिया ये रहा। तब से हनुमान जी की इसकी पूजा होने लगी। तो यहां ऐसा प्रसंग नहीं आता है। यहां ये आता है कि जब हार दे दिया, हनुमान जी ने बड़े प्रेम से पहन लिया और राम जी ने देखा कि सीता जी की तो सेवा की राम जी ने, ये हनुमान जी ने, तो हनुमान जी ने बहुत कुछ पा लिया। मैं भी कुछ देऊं? अब मैं क्या देऊं? मेरे पास बहुत मूल्यवान मणि थी, जिससे ऊंचा मेरे पास कोई रत्न नहीं था। वो मैंने सीता जी को दिया और सीता जी ने हनुमान जी को दे दिया। अब रत्नों में तो मैं क्या देऊं? और देना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे पर भी तो उपकार किया है इसने। सीता का तो किया ही है, मेरे पर भी उपकार किया है। अतः हनुमान जी महाराज को बुला करके राम जी ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हारे पर तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं। आज तुम ऐसा खुल करके मांगो, मेरे से वरदान मांगो, ऐसा खुल करके मांगो जो मैं देवताओं को नहीं दे सकूं। देवताओं को भी वो वरदान नहीं मिलता, ऐसा तुम मेरे से वरदान ले। तो हनुमान जी हाथ जोड़ करके नम्र होकर के कहने लगे, महाराज, आपसे वरदान मांगता हूं कि सुबह उठूं तब से लेकर सोऊं तब तक मेरे होठ के ऊपर आपका नाम नाचता रहे और मेरा मन कभी तृप्त भी ना हो, खूब राम राम करता रहूं। और मेरा मन तृप्त नहीं है कि आज तो खूब नाम ले लिया बाबा, अब छोड़ो, ऐसी इच्छा ही ना हो। हो सकती है महाराज मेरी गलती हो, लेकिन आप मुझे वरदान देने के लिए बोले तो ये वरदान दे। सारे बानर अवाक रह गए, घरे कितने चतुर हैं हनुमान जी। और कहा कि दूसरी बात यह है कि जो है, मैं जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक मेरा शरीर पृथ्वी पर रहना चाहिए, मैं आपसे कोई लोक परलोक नहीं चाहता हूँ, मुझे पृथ्वी लोक ही चाहता हूँ। क्यों? कि पृथ्वी लोक पर आपके नाम लेने वाले लोग बहुत हैं, आपके नाम लेने वाले बहुत हैं, आपकी कथा सुनने वाले भी बहुत हैं। इसलिए आपकी नाम की महिमा और आपकी कथा की महिमा को सुनने के लिए मैं जहां तहां जा सकूं, इसलिए आप मुझे पृथ्वी लोक के बाहर कहीं मत जाने दो, पृथ्वी लोक में ही रहने दो। ये वरदान मांगे तो भगवान ने कहा जाओ, ये वरदान हमने तुमको दिया और जब तक ये प्रलय नहीं होगा तब तक तुम यहां पृथ्वी पर रहोगे और उसके बाद तुम्हारी सायुज्य मुक्ति हो जाएगी। सायुज्य मुक्ति माने मेरे अंदर तुम एक हो जाओगे। सीता जी ने कहा कि जब तक ये रहेंगे, हनुमान जी रहेंगे पृथ्वी पर, तब तक ये कैसे रहेंगे? ये तो वरदान दिया ही नहीं आपने। खूब ये बालक खूब हृष्ट पुष्ट रहे, खूब खावे पिए। देखो माँ के मन में खाने पिलाने की बहुत रहती है। बेटा 60 वर्ष का हो गया तब भी माँ यही बोलती है कि बेटा तू रोटी जिम ली कि नहीं, तो भोजन किया कि नहीं? तो माँ कह रहे उन्हें, माँ मैंने भोजन कर लिया कि ठीक। माँ खुश हो जाती है। माँ का जो हृदय होता है वो कैसा होता है वो तो आप लोग माताएं लोग ही जानती हैं। खिलाने पिलाने में खुद भूखी रह जाएंगी लेकिन बेटे को भूखी नहीं रखेगी, खुद भूखी रह जाएंगी पति को भूखा नहीं रखेंगी, और खुद भूखी रह जाएंगी भाई को भी भूखा नहीं रखेगी। महाराज जी तो कहा करते थे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे अभी तो वो कुछ समझते ही नहीं है, उन छोटे बच्चों को आप देखो कि बड़ी बहन है वो छोटे बहन को, छोटे भाई को अपने गोद में रखेगी और जो है दोनों के हाथ में आप गोली दे, वो बड़ी बहन है वो छोटे भाई को अपनी अपनी जो गोली खिलाने में दे देगी लाड प्यार में। लेकिन भाई को आप गोली दे वो खुद खा जाएगा, वो नहीं देगा। वो ऐसा महाराज जी का कहा हुआ है। ऐसी देने की एक वृत्ति बचपन में होती है माताओं की, उप देती है वो, खिलाती है। जानकी जी ने कहा कि सुनो हनुमान, हम तुमको एक अलग सा ही वरदान और देते हैं। तुम जहां कहीं भी रहोगे लोग तुम्हारे बहुत आदर करेंगे और तुम्हारे यहां बहुत वस्तु लाला कर देंगे, तुम्हारे पास वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी, खूब खाने पीने की सामग्री रहेगी। सालासर जाते हैं ना कभी आप? जब भी जाते हैं तब सवामणि, जब भी एक एक दिन में देखा कितनी सवामणि चढ़ती है हनुमान जी महाराज के। किसी मंदिर में जाओ कुछ न कुछ वहां पर चढ़ावा मिलेगा। एक घोर जंगल के अंदर मंदिर देखा, वहां भी नारियल और कुछ चीज रखी हुई चढ़ाई हुई मिली। घोर जंगल में गए थे कि यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर, चलो थोड़े तो वहां पर एक नारियल रखा हुआ और कुछ वस्तु रखी हुई। सीता जी का वरदान है कि स्थितम त्वाम अनुयास्यन्ति भोगा सर्वे ममाज्ञया, मेरी आज्ञा से तुम्हारे पास बहुत से भोग पदार्थ आते रहेंगे। इसलिए सीता जी का ये वरदान आज भी देखने को मिलता है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि अच्छा महाराज, अब मैं आपका भजन करने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तो राम जी ने कहा ठीक है भाई। तो राम जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके हनुमान जी महाराज हिमालय में चले गए और वहां जाकर खूब भगवान का भजन किया। पर गए वो कृच्छ्रात, बड़े मुश्किल से गए थे। कृच्छ्रात ययौ तपस्तप्तुम हिमवंतम महामति। फिर राम जी ने निषाद राज से कहा, निषाद राज तुम्हारा समय हो गया, अब तुम भी अपने श्रृंगवीरपुर में जाओ। माम एवं चिंतया नित्थम, आप मेरा इसी प्रकार से चिंतन करते रहना। भुंक्ष्व भोगान निजार्जितान, और दूसरे के भोग नहीं, अपने भोग हैं, अपने बाहुबल से कमाए हुए भोग पदार्थ हैं, उनका तो उपभोग करते रहना। तुम भी आगे जाकर के मेरे सारूप्य को प्राप्त होगे, ऐसी कोई जो है संदेह की बात नहीं है। ऐसा कहकर के राम जी ने बहुत सा आभूषण तत्व ज्ञान का उपदेश देकर के निषाद राज गु को विदा कर दिया। बा और सुग्रीवादी बंदरों को भी वहां से विदा कर दिया। सब बड़े प्रसन्न होकर के अपने अपने स्थान पर चले गए और वे किष्किंधा पहुंच गए। विभीषण को भगवान ने अनेक प्रकार से सांत्वना देकर लंका की ओर विदा किया। राम जी महाराज ने अपने वहां पर बिना चाहते हुए भी लक्ष्मण जी को युवराज घोषित कर दिया। लक्ष्मण परया भक्त्या राम सेवा परो भवत, लक्ष्मण जी को युवराज बनाया भगवान ने, सबकी सम्मति से बनाया। लक्ष्मण जी को कहा कि देखो लक्ष्मण, जब तुम विपत्ति के समय हमारा साथ दे सकते हो तो इस समय भी तो तुमको हमारा साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि विपत्ति में सहायता दी तो अब हमको राज्य मिला, तो राज्य में भी सहायता करो, तुम राज्य का संचालन करो। अनिच्छयापि, बिना इच्छा के भी लक्ष्मण जी ने स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि परया भक्तिया, उनके मन में बड़ी विलक्षण भक्ति थी। भगवान वास्तव में कुछ करते धरते नहीं है, पर ऐसे काम में लगे रहते हैं जैसे इनके किए बिना काम होगा ही नहीं। ऐसे काम करना चाहिए सज्जनों, माने काम ऐसा करो कि काम करो और कर्म का फल न मिले, कर्म का फल न मिले हो। फल कौन सा? पाप पुण्य न लगे, और कर्म करते रहना चाहिए। यही गीता का उपदेश है। स्वानंदे नापि संतुष्ट है, वे अपने आत्मा से संतुष्ट हैं, परंतु फिर भी वे अश्वमेध यज्ञ आदि यज्ञ किया करते थे। भगवान अनेक प्रकार के यज्ञ इसीलिए करते थे कि अपने आनंद के अंदर समा जाए, अपने आनंद में संतुष्ट रह जाए। राम जी के राज्य में किसी को भी शरीर की बीमारी से मरना नहीं पड़ता था। क्या करें साहब, शरीर में बीमारी आ गई इसलिए अब मृत्यु आ गई, ऐसा राम जी के राज्य में नहीं था। बड़े बूढ़ों के रहते हुए बालकों की मृत्यु नहीं होती थी। राम पूजा परा सर्वे, घर घर में राम कथा होती थी। समय पर बदल बरसते थे, प्रजा अपने धर्म का पालन करती थी। राम जी अपने पुत्रों से बढ़ करके प्रजा का पालन करते थे। राम जी ने 10,000 बरस तक शासन किया। अब आप भागवत को ले आओगे, कह गो साहब भागवत में तो 13,000 बरस लिखा है। हमारे एक भगत ले आएंगे वाल्मीकि रामायण, कहेंगे साहब वाल्मीकि रामायण में 11,000 बरस लिखा है। आप ये ला करके अध्यात्म रामायण लेके इसमें लिखा है 10 वर्ष सहस्राणी, तो 10 वर्ष रहे कि 11 वर्ष रहे कि 12 वर्ष रहे, आपके हिंदुओं के अंदर ये जो भगवान की बातें लिखते हैं ये एक जैसी नहीं मिलती है। इसीलिए तो देखो आपके धर्म में हमारी रुचि नहीं होती, ऐसे दूसरे लोग बोलते हैं। आपके अंदर एक ऋषि नहीं है, एक पुस्तक नहीं है, कोई शिव पुराण लिए चलता है तो कोई विष्णु पुराण लिए चलता है, तो कोई भागवत पुराण लिए चलता है, तो कोई अध्यात्म रामायण पुराण लेके चलता है, कोई मर्जिया जैसा शिव जी के मंदिर में जा रहा है, कोई देवी के मंदिर में जा रहा है, कोई जो है संतोषी माता ही मंदिर के अंदर जा रहा है, कोई नीलकंठ महादेव में जा रहा है। तो तुम्हारे यहाँ एक पूजा नहीं होने से अलग 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 ग्रुपबाजी हो गई, आते हुए हिंदू धर्म पिछड़ गया, तो हिंदू धर्म के अंदर रह के क्या करोगे? ऐसे ऐसे लोग बहकाते हैं लोगों को। अब देखो इसके अंदर समझते नहीं है, निज अज्ञान राम पर धरे है, तो खुद का अज्ञान नोट रखते हैं भगवान पर। 10,000 वर्ष, 12,000 वर्ष, 13,000 वर्ष, तीनों ग्रंथों में अलग अलग बातें आती हैं। क्यों आती हैं? ये इसलिए आती है कि कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कभी 13 वर्ष रहे, कभी 12 वर्ष रहे, कभी 11 वर्ष रहे। भगवान की कथाओं में जितनी विभिन्नता आती है उतनी ही भगवान की महिमा ज्यादा है। एक रूप कथा होती है वो एक जीव की होती है, भगवान की एक रूप कथा नहीं होती। जीव की जो चरितावली है, जीव का जो इतिहास है, जीव का जो इतिवृत्त है, वो एक जैसा होता है। भगवान की लीला में भिन्नता आएगी, क्योंकि भगवान भिन्न भिन्न लोक में भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं। इदम रहस्यम धनधान्य रिद्धिमत दीर्घायुर आरोग्य करम सुपुण्यदम पवित्र माध्यात्मिक संगीतम पुरा रामायणम भाषितम आदि शंभुना। भगवान शंकर ने ये महापुरा ये जो है अध्यात्म रामायण की कथा कही है। ये धन धान्य को देने वाली है। इसको जो बड़े प्रेम से सुनता है, भक्ति पूर्वक सुनता है, तो सब लोग इसको सुन सुन करके जो है सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जो उन लोगों की इच्छा होती है, और महान भयंकर से भयंकर पाप होते हैं उन पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति राम के राज्याभिषेक की कथा सुनता है, उसकी धन की इच्छा हो तो धन मिलता है, पुत्र की इच्छा होती तो पुत्र मिलते हैं, और उसकी जो इच्छा होती है सुतम आर्य सम्मतम, और आर्य सम्मत इच्छा होनी चाहिए। आर्य सम्मत इच्छा क्या होती है भाई? आर्य सम्मत इच्छा ये होती है कि जिस इच्छा से दूसरे का नुकसान न हो। अब कोई कहे कि साहब हम वाल्मीकि अध्यात्म रामायण, इस अध्यात्म रामायण से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करें तो कि भाई ये उल्टी बात तुम्हारी गले में आ जाएगी। कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कल्याणकारी ग्रंथ है। अपने पाप नाश तक इसको सीमित रखना चाहिए। अपने पाप की नाश के लिए और लोगों के अभ्युदय के लिए, कल्याण के लिए रखें, परंतु इसको कभी भी दूसरे के अनिष्ट के लिए नहीं रखना चाहिए। जो अध्यात्म रामायण को सुनता है वो राजा बड़ा जो है धन संपत्ति से युक्त होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। कहते हैं लिख दिया ना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। तो शत्रु वास्तव में शत्रु कौन है? जो हमारी मातृभूमि को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। अपने व्यक्तिगत की बात नहीं है, राजा के लिए कहा है, हर किसी के लिए नहीं कहा है। देखो कई कई ऐसे मंत्र आते हैं जिन मंत्रों से आता है कि मम शत्रु नाश है, मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। तो ऐसे मंत्र आते हैं उनका क्या करें? अरे वो मम शत्रु नाश है, मेरे शत्रुओं का नाश करो, तो वो कौन से शत्रु है जो हमारे अंदर काम रूप से, क्रोध रूप से, लोभ रूप से, मोह रूप से बैठे हुए शत्रु है, उनकी बात है। लौकिक जो हम राग द्वेष से किसी को शत्रु मित्र मानते हैं, ये हमारी भूल से माने हैं। इनके अंदर ये ग्रंथ सहायता थोड़े ही करेगा। उल्टा यदि इनका इतना नीचा प्रयोग करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसान की बात हो जाएगी। इसलिए ये नहीं देखना चाहिए कि देखो साहब अमुक मंत्र में ऐसा आया है, मम शत्रु नाश है, उत्पीड है, उत्पीड है, नाश है, नाश है, वो उनके लिए नहीं है। ये काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं के लिए है। शत्रु विजित्य है। और माताएं बहनें यदि इस कथा को सुनती हैं तो कहते हैं, माताएं बहनें इस कथा को सुनती हैं तो वंध्या भी पुत्र प्राप्त कर सकती है। और जो है कोई जिसके बाल बच्चे बीच में ही नष्ट हो जाते हैं, वो यदि इस कथा को सुनते हैं तो उसके भी बाल बच्चे हो सकते हैं। कोई कहते हैं कि हमने तो ऐसा करके देखा तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या करें, इसमें इसका मतलब है कि रामायण का प्रभाव तो नहीं है। एक व्यक्ति ने बताया कि हमारे यहाँ कोई पिताजी थे, उनके लिए महामृत्युंजय का जाप कराया, खूब अच्छे विधि विधान से करवाया, ब्राह्मणों ने बड़े प्रेम से किया, लेकिन फिर भी हमारे पिताजी तो मर गए। तो हमने देखा हटाओ, इन मंत्रों में कुछ नहीं रखा है, सब कहने सुनने की बात है। मर क्यों गए हमारे पिताजी? वो क्या है, सत्संग नहीं करते ना, इस कारण से तत्व का ज्ञान नहीं होता। कि तत्व का ज्ञान क्या करे, हमारा बाप हमारे सामने मर गया ना, हमको मालूम। पंडित लोग तो वहां मृत्युंजय का जाप कर रहे हैं और उधर पिताजी का सांस निकल गया। तो देखो उसमें थोड़ा विचार करना चाहिए। आपने पिताजी के लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाया और पिताजी मर गए। अब क्या अनुष्ठान रूप कर्म और पिता का प्रारब्ध रूप कर्म का फल, इन दोनों फलों में प्रबलता जिसकी रहेगी ना, वो प्रबलता वाला, अत्यंत प्रबलता रहेगी तो वो प्रबल वाला काम तो हो जाएगा। परंतु महामृत्युंजय का जब जो आप अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए कर रहे थे, आपका भाव तो यही था कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहे, तो वो पिताजी आपके इस जीवन में महामृत्युंजय का फल लेकर के मरे हैं, तो उनको अगले जन्म में जरूर मिलेगा, इसलिए ये चीजें व्यर्थ नहीं जाती हैं, ये चीजें ये अनुष्ठान वगैरह व्यर्थ नहीं जाते। परंतु हमारी सीमित दृष्टि, स्वार्थ की दृष्टि ऐसी होगी कि अगले जन्म में जाने ये क्या होंगे क्या नहीं होंगे, हमें क्या मतलब, हमें तो इस जन्म में चाहिए। तो भाई इतनी छोटी दृष्टि मत रखो, थोड़ी दीर्घ दृष्टि रखनी चाहिए, बड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। आपको पिताजी के साथ, आप उनके साथ में एक बहुत बड़ा पाथे भेज रहे हो। जैसे आपके पिताजी यहाँ से इंग्लैंड जाना चाहें और जो है अमेरिका जाना चाहें, तो आप उनको खूब सा पैसा दे देंगे, साहब परदेश जा रहे हो, ये लाख दो लाख दस लाख रुपए लेके जाओ, वहां पर क्या पता क्या कहाँ कुछ काम पड़ जाए, आप पैसा लेकर जाओ। ऐसे ही पिताजी को आप खूब अच्छे अनुष्ठान के साथ में भेजिए, ताकि वो अनुष्ठान का फल उनको आगे भी मिले। इसीलिए तो हमारे शास्त्र श्राद्ध के लिए बोलते हैं, श्राद्ध माने श्रद्धया कृतम श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाता है उसका नाम श्राद्ध है, श्रद्धा से करते हैं। अब लोग आलोचक होते हैं, वो क्या कहते हैं कि साहब हम एक आदमी को इस छत पर बैठा देंगे और यह हम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, तो फिर क्या हमारे पिताजी को भोजन वहां छत पर बैठे मिल जाएगा? ये तो दिल्लगी करनी है, ये शास्त्रों के साथ मजाक करना है। उन्होंने कहा कि मरे हुए के बाद वो भोजन कर सकते हैं कि नहीं आपके पिताजी यहाँ, या आप उनको वहां भोजन दे सकते हो कि नहीं? कि दे तो सकते है, तो दे सकते है, वो काम तो करते नहीं और दिल्लगी करते हैं कि हम उनको ऊपर बैठा दिया या हम ब्राह्मणों को भोजन करते हैं, वो उनको नहीं मिला तो मरने के बाद कैसे मिलेगा? ये केवल मजाक है। मरने के बाद ऐसे मिलेगा वो, जब ये अनुष्ठान कब काम आते हैं, जब हमारी असमर्थ अवस्था होती है, उस समय में ये सहायता करने वाले होते हैं। पिता ऊपर बैठे हुए हैं, वो यहाँ आकर भोजन कर सकते हैं, अथवा हम यहाँ से भोजन उनके लिए वहां ले जा सकते हैं, हमारे पास असामर्थ्य नहीं है, असामर्थ्य नहीं है, अतः वो काम हमको करना चाहिए जो काम हम यहाँ कर सकते हैं। अब पिताजी संसार से चले गए, अब संसार से चले गए तो उनके पीछे हम क्या करें, उनके पीछे सत्कर्म करें, तो उनके नाम से सत्कर्म किया जाएगा तो वो सत्कर्म का फल उनको मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे अब देखो, यहाँ आप कहीं बैंक में रुपया जमा करा दिया और वो बैंक में रुपया आपका जहाँ जमा कराया वो अगले आपका जहाँ खाता है उसमें जाके जमा वापिस हो जाता है। क्या क्या सिस्टम चले हैं यहाँ, ये अभी नया ही सिस्टम चला है ये थोड़े वर्षों में ही। यहाँ आपने बैंक में 10,000 रुपया जमा करा दिया, थोड़ी देर में जाओ आपका वहां पर 10,000 रुपया वहां बैंक में आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। कैसे कैसे आ जाते हैं? ऐसे ही आपने यहाँ श्राद्ध कर्म किया, आपने अपने बुजुर्गों के लिए, अपने दिवंगत माता पिता आदि के लिए जो भी शुभ कर्म किया उनके निमित्त, वो जहाँ है वो एक व्यवस्था के द्वारा उनके पास वो चीज पहुंच जाएगी। इसलिए अपने माता पिता दादा दादी की यथाशक्ति शास्त्रों में श्राद्ध करने का विधान आता है, पर उसमें ये लिखा है कि श्राद्ध के अंदर विस्तार नहीं करना चाहिए, श्राद्धे कुरिया न विस्तरम। वही साहब लोग श्राद्ध के अंदर बड़ा बड़ा भोजन करते हैं, आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है तो खूब लोगों को बुला लिया। नहीं भाई, 2 ब्राह्मण को बुलाओ ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा हो तो 3 ब्राह्मण बुलाओ, इससे ज्यादा श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पवित्र ब्राह्मण मिलेंगे नहीं। अच्छा, आपके यहाँ ब्राह्मण आ गया और दूसरे के यहाँ पर कहीं कमी आ जाए, उस दिन और जगह भी तो जो है श्राद्ध होगा, दूसरे के यहाँ कमी आ जाएगी। इसलिए श्राद्ध के लिए अच्छे ब्राह्मण को देखना चाहिए, ब्राह्मण भी बड़ा पवित्र हो, बड़ा शिष्टाचारी, संध्या गायत्री करने वाला हो और वैदिक मंत्र को जानने वाला हो, बड़ा जो है उसको विधि पूर्वक ही वो श्राद्ध लेने का अधिकारी होता है, श्राद्ध का खाने का अधिकारी नहीं होता। शिखा सूत्र होना चाहिए, जनेऊ होनी चाहिए, त्रिकाल संध्या करने वाला होना चाहिए, श्राद्ध में वो एक समय भोजन करे, ऐसा नहीं कि यहाँ भी जाए हो वहां भी जाए हो वहां भी जाए हो, ऐसा नहीं होता है। एक समय भोजन करे, शाम को भोजन न करे। और भाई कई कई बातें हैं वो आपको कहेंगे तो आप चिढ़ जाएंगे, चिढ़ना नहीं, महाराज जी की सब संतों की कही हुई बात है कि परिवार नियोजन कराया हुआ ब्राह्मण मिल जाए तो आपका श्राद्ध उस पितरा आपके पितरों को नहीं मिलेगा, और आपने यदि परिवार नियोजन करा लिया तो आपका दिया हुआ नहीं मिलेगा, भूखे प्यासे रहेंगे। इसलिए परिवार नियोजन वालों का ये श्राद्ध मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो एक पितृत्व संबंध ही खत्म कर दिया। बात तो ये है, चाहे राजी हो चाहे नाराज हो, बात शास्त्रों की तो यही है। तो ये अध्यात्म रामायण है, ये अध्यात्म रामायण सब प्रकार के पाप को दूर करने वाला होता है, पितरों को भी प्रसन्न करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से अध्यात्म रामायण में श्रद्धा रखने वाले होते हैं, वे जो है इस संसार में बड़ा भारी पुण्य का काम करते हैं। राम एव परम ब्रह्म है, भगवान राम परब्रह्म परमात्मा है। उन राम के प्रसन्न हो जाने के बाद धर्म अर्थ काम मोक्ष की मानो वर्षा ही होने लगती है, इतनी भगवान की कृपा की महत्ता है। रामायण को पूरा सुनना चाहिए। कल्प कोट त्यघनाशनम, करोड़ों करोड़ों कल्पों के करोड़ों करोड़ों पापों का नाश होता है। देवता प्रसन्न होते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं, ग्रह प्रसन्न होते हैं, ऋषि मुनि प्रसन्न होते हैं। रामायण के सुनने से तृप्यंती पितरस तथा, ये बता दिया, पितर वगैरह सब प्रसन्न होते हैं। अध्यात्म रामायण बड़ा अद्भुत है, इसमें ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। जो व्यक्ति इसको लिखते पढ़ते हैं उनके समान संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं होता, और न पुनर्भवो भवेत, उनका फिर दोबारा जन्म भी नहीं होता। हमारे भगवान शंकर ने सारे वेद राशि का आज आलोडन विलोडन किया, खूब अच्छी तरह से सारे वेदों का जो है मंथन किया। मंथन करने के बाद उन्होंने ये देखा कि राम नाम है, ये राम नाम है, ये भगवान की रहस्यमय मूर्ति है। ऐसा विचार करके वे राम नाम को अपने होठों पर रख लिए और संपूर्ण त्रिलोकी के कल्याण में भगवान शंकर लग गए। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, लिए महेश जी जान। भगवान शंकर ने अपने हृदय में राम नाम को सबसे बड़ा माना। क्यों? क्योंकि रामायण कितनी थी, शत कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। अब 100 करोड़ रामायण में से भगवान शंकर ने क्या किया, त्रिलोकी को बांटा। तो 100 करोड़ 100 करोड़ है तो वही 330 करोड़ बांटी तो भाई 10 करोड़ बाकी रह गई। फिर 3-3 करोड़ बांटी तो 1 करोड़ बाकी रह गई। फिर जो है 330 लाख बांटी तो 10 लाख बांटी बाकी रह गई। फिर जो है 33 हजार दिया तो 1 लाख बाकी रह गई। अब 1 लाख बाकी रह गई तो उसमें 33 हजार सबको दिया तो 1 हजार बाकी रह गई। 1 हजार में जो है फिर जो है सबको 300 दी तो 100 बाकी रह गई। फिर 33 और त्रिलोकी को बांट दी तो 1 रामायण बाकी रह गई। अब 1 रामायण बाकी रही, अब 1 का कैसे विभाग करें? तो 1 रामायण में 1 श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। 32 अक्षर है तो 32 में 30 का भाग दिया तो 10-10 अक्षर तीनों को और दे दिए। अब 2 अक्षर बाकी रह गए, 2 अक्षर बाकी रह गए तो रा और मैं शंकर भगवान ने अपने पास में रख लिया और बाकी सारी त्रिलोकी को दे दी। कि ये भी पास में क्यों रखा? भगवान शंकर कहने लगे, देखो ये हमारे बच्चे हैं त्रिलोकी में, अब बाप है वो अपनी सारी संपत्ति बच्चे को दे दे। और फिर बाप ये भी समझता है कि बच्चे हैं, कभी व्यापार में अखड़ जाएंगे, बिखर जाएंगे, क्या पता कभी माल जो है डाउन हो जाए, भाव डाउन हो जाए, कभी क्या हो, तो कुछ अपने पास धन रखो, इन बच्चों की सहायता कर देंगे। हमको कोई मरने पर साथ में थोड़ी ना ले जाना है, नहीं हम ले जा सकते हैं। माइत सदा यही सोचते हैं कि बच्चों पर कोई आफत न आए, तो हमारी पूंजी से सहायता कर दे। अब त्रिलोकी ने वो और जो है 33 करोड़ 100 करोड़ रामायण का बंटवारा तो कर लिया, लेकिन सब इधर उधर भोगों में फंस गए बच्चे, अब मरने लगे। तो महाराज हमारी तो पूंजी खत्म हो रही है, शंकर भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, आप हमारे माहित हो। तो भगवान शंकर कहते आ जाओ हमारे पास, राम नाम है वो तुमको हम देते रहते हैं। तो वो त्रिलोकी के अंदर मरने वाले लोगों को जो भगवान की शरण में आते हैं उनको भगवान शंकर राम नाम दे करके उनको पार लगा देते हैं। इसलिए लिए महेश जिए जान, रामायण शत कोटि मह लिए महेश जिए जान, निर्गुण ते ऐ भांति बड़, निर्गुण से भी नाम नाम बड़ा, सगुण से भी बड़ा। और रामायण शत कोटि मह लिए महेश जिए जान, 100 करोड़ रामायण में से ऐसे भगवान शंकर ने 2 अक्षर अपने पास में रखे। तो वही बात कहते हैं उद्धृत्याखिल सार संग्रह इदम्। पहले तो सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, उसमें जो सार निकला उसमें उपनिषद सार निकला, और उपनिषद का भी और अर्थ निकाला तो ये राम नाम सार निकला। वो राम नाम लेकर के भगवान शंकर काशी में बैठ गए, क्या करने के लिए, सदावर्त खोल दिया। सदावर्त, सदावर्त में तो कोई आओ कभी आओ, भूखे मत रहो, भोजन करो और चले जाओ, जान पहचान हो अनजान हो कोई हो। ऐसे ही भगवान शंकर ने सदावर्त खोल दिया, आओ और हमारे यहाँ राम नाम सुनो और कल्याण करो। श्री रामस्य निगूढ़ तत्वम अखिलम प्राह शिवा प्रियाय भव है। भगवान शंकर ने बड़े प्रेम से ये रामायण की कथा जो है पार्वती को सुनाई थी। ये रामायण की कथा राजाभिषेक के साथ हमने आपको सुना दी। अब इसका उत्तरकांड का प्रारंभीकरण होता है। पार्वती जी ने कहा महाराज राम कथा आपसे हमने सुनी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारा मन तृप्त नहीं हो रहा है। इस राम कथा में अब तक आपने राम जी की खूब महिमा लिखी, लेकिन जो रावण आदि इतने बलवान थे उनको मारा इतनी बात आई, इतने मात्र से राम जी का प्रभाव पूरा समझ में नहीं आता है। तो ये राक्षस लोग हैं रावण आदि, इनके इनके द्वारा कैसा संसार के अंदर प्रताप फैलाया गया था, उस रावण को मारने में भगवान को क्या क्या करना पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने भी जिनको मनुष्य बनने के लिए कहा, इसका वास्तविक रहस्य क्या है, इस वास्तविक रहस्य को आप हमको समझाइए। क्योंकि कथा पीयूषम आसाद्य तृष्णा में अतीव वर्धते, अब तो हमारी और ज्यादा तृष्णा ये सुनने के लिए हो गई है। तो राम जी की ये कथा हमको विस्तार से और सुनाओ। अब मध्यम विश्राम के बाद उत्तरकांड की कथा पार्वती जी के पूछने पर भगवान शंकर सुनाते हैं। राम 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 राम